Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
श्वेताश्वतर उपनिषद के स्वाध्याय अंतर्गत पहले अध्याय का सातवें मंत्र में भाष्य बाकी है, तो मंत्र का उच्चारण करे तीन बार। उद्गीत में तत्परमं तु ब्रह्मा तस्मिस्त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम् च अत्रांतरम् ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परे योनिमुक्ताः उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। इसका भाष्य है, तो उद्गीतमे तत् परमं तु ब्रह्म, श्रुतियों ने ब्रह्म को उत यानी पृथक करके गीतम गाया है। किससे किससे पृथक करके? कार्य करण भाव सप्रपंच से, उसको ऊपर उठाकर उद्धृत करके गाया है। कौन कौन से श्रुति ने उस ब्रह्म को प्रपंच से, कार्य कारण भाव प्रपंच से अलग करके गाया है, उन अनेक श्रुतियों का प्रमाण दे रहे थे। कल कहां तक हुआ था? कठोपनिषद की श्रुति का, श्रुति तक का प्रमाण दिया था। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यो यदि शशि तद्वद है। नचिकेता ने यमराज से पूछा है, आप यदि कारण कार्य कारण भाव प्रपंच से भिन्न अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म से भी भिन्न और अधर्म से भी भिन्न, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, इस संसार में किए हुए कर्म और न किए हुए कर्म के बंधनों से भी अलग है। मौन इस प्रश्न कर सकता है कि न किए हुए कर्म का क्या बंधन होगा? महाराज, किए हुए कर्म का ही तो बंधन होगा, न किए हुए कर्म का क्या बंधन होगा? न किए हुए कर्म भी फल देते हैं, इसलिए उसका भी बंधन होता है। न किए हुए कौन से कर्म बंधन के कारण होंगे, फल देंगे? नित्य कर्म यदि न करोगे तो प्रत्यवाय होगा, वही बंधन होगा। ये अकरणे प्रत्यवाय साधनानि नित्यानि, कुछ कर्म करने पर पाप होता है, कुछ कर्म न करने पर पाप होता है। करने पर पाप देने वाले कर्मों के बारे में तो हमको समझ में आती है कि ये किया है इसलिए पाप हुआ। चोरी करने पर पाप होगा और बंधन का कारण बनेगा, है ना? व्यभिचार दुराचार करने पर पाप होगा और वो बंधन का कारण बनेगा, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन साथी शास्त्र ने यह कहा है नित्य नैमित्य कर्म नियमित करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और नित्य नैमित्य कर्म यदि तुमने छोड़ दिया यानी नहीं किया तो पाप होगा और वो बंधन का कारण होगा। इसलिए कृतात् अकृतात्। इसका भाष्यकार ने अर्थ यूं किया है इस मंत्र की कृतात् अकृतात् से। कृतात् माने अस्मिन् जन्मनि कृतात्, अकृतात् माने पूर्व जन्मनि कृतात्। इस जन्म में तो नहीं किया लेकिन पूर्व जन्म में जो किया है उस पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को यहां अकृत कहा है, क्योंकि इस जन्म में नहीं किया है ना, फिर भी बंधन का कारण होगा कि नहीं? पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म बंधन का कारण होगा कि नहीं? तो व्यक्ति यही कहते हैं कि हमने इस जन्म में कोई पाप ही नहीं किया फिर यह दुख क्यों होता है? तो इसका उत्तर यही है, इस जन्म में नहीं किया, पूर्व जन्म में किया है। अब लोग फिर प्रश्न करते हैं कर्म करे कोई और भोगे कोई, क्योंकि पूर्व जन्म के शरीर ने कर्म किया तो इस जन्म का शरीर क्यों भोगे? होगा कि नहीं? तुलसीकृत रामायण में, तुलसीकृत रामायण में दशरथ ने इस शब्द का प्रयोग किया है, कर्म करे कोई और भोगे कोई। किस प्रसंग में कहा? जब राम को 14 वर्ष वनवास जाने का जो प्रश्न आया तो दशरथ ने कहा गलती तो मैंने की है कर्म तो मैंने किया है और मेरा किया हुआ कर्म का फल मुझे भोगना चाहिए और राम को क्यों भोगना पड़े और 14 वर्ष जाना पड़े उनको? गलती करे मैं ना? स्त्री के मोह में पड़ा मैं, तो उसी के चलते तो मैंने 2 वरदान देने का वचन दिया। और दूसरा श्रवण कुमार के मां बाप को मारा तो मैंने, और उस कर्म का फल राम को 14 वर्ष जंगल जाना पड़े। तो कर्म करे कोई और फल भोगे कोई। तो नेपाल में कहा जाता है ना, काम करे कालू खाए भालू, है ना? होता ही है। जंगलों के पास में जो खेती करते हैं, जंगल में तो भालू रहते ही है। अब कालू नाम का किसान था, दिन भर काम करता था, जब फसल लगे और काटने से पहले भालू आता था वो सारे फसल खा जाता था। तो तब से कहावत शुरू हो गया, काम करे कालू खाए भालू। तो यही तो हो रहा है नहीं? तो लोग यही कहते हैं महाराज जब इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया तो ये क्यों भोगना पड़ रहा है? तो हम उसका उत्तर देते हैं कि भाई पिछले जन्म में तुमने किया है उसका कर्म फल भोगो। तो बड़े होशियार है, कहते हैं कि पिछले जन्म में तो पिछला शरीर ने किया, तो पिछला शरीर ने कर्म किया और ये शरीर क्यों भोगे? तो इसका अर्थ यही हुआ है ना, काम करे कालू और खाए भालू। देखो भोक्ता शरीर नहीं है, भोक्ता तो चिदाभास है, और सूक्ष्म शरीर युक्त चिदाभास करता हुआ है और सूक्ष्म शरीर युक्त चिदाभास ही भोक्ता बनेगा। तो पहले शरीर में भी यही सूक्ष्म शरीर युक्त चिदाभास, सूक्ष्म शरीर वही है, चिदाभास वही है। इस शरीर में भी सूक्ष्म शरीर वही है, चिदाभास वही है, तो वही कर्ता हो गया, वही भोक्ता हो रहा है। तो तुम्हारा प्रश्न बेकार का है। सोच का भी गलत होता है, सोच का भी गलत, उसका फल तो होता ही है ना, कर्म हो जाएगा। इसीलिए तो कहना पड़ता है ना, मनसा वाचा कर्मणा यत कृतम, संकल्प कराते समय में यही तो कहते हैं ना, तुम संकल्प करो, मनसा वाचा कर्मणा यत कृतम, ये कायन वाचा मनसेर इंद्रियेर वा, ये सब तो मन से क्या कर्म करोगे तो वही संकल्पात्मक कर्म। इसलिए कहते हैं ना, ये दृष्टांत देते हैं ना, कोई एक व्यक्ति चोरी करने के नियत से किसी के घर में घुस गया, किस नियत से, चोरी करने के नियत से किसी के घर में घुस गया और चोरी करने की तैयारी कर रहा था, इतने में घर का मालिक जग गया और पकड़ा गया, चोरी करने की तैयारी करते करते पकड़ा गया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस अपराध में उसको दंड देना दिया, तो उसने सफाई क्या दी कि घर का मालिक ये प्रूफ करे कि उसकी कौन सी वस्तु चोरी हुई है। मैंने चोरी किया ही नहीं तो मुझे क्यों चोर के रूप में मुझे अरेस्ट किया गया और किस चोरी के रूप में मुझे दंड दिया जा रहा है। मालिक प्रूफ करे कि उसके कौन कौन से वस्तु चोरी हुई है। मालिक को बुलाया, इस व्यक्ति ने तुम्हारे कौन कौन से वस्तु चोरी की बताओ। मालिक ने कहा कि कोई नहीं, कुछ नहीं चोरी किया। अब जब कुछ चोरी नहीं किया तो मुझे क्यों फंसाया जा रहा है। तब कानून ये कहता है फिर भी तुम चोर हो, फिर भी तुम चोर हो। चोरी किए बिना चोर होगा कि चोरी करने के बाद चोर होगा। तब कहा कि तुम उस घर में किस उद्देश्य से घुसे हो। तो उसने कहा उद्देश्य तो मेरा चोरी करने का ही था, नियत तो मेरी उस घर में चोरी करने का ही था, लेकिन केवल उस घर के चोरी करूंगा इतने संकल्प मात्र से मैं चोर तो नहीं कहलाऊंगा। तो बोले तुमने जो उसके घर में चोरी करूंगा ये संकल्प करके तुम उसके अंदर घुसे ना, यही तुम्हारे चोर होने में प्रमाण है, यही गुना है। क्योंकि मानसिक रूप में तो तुम चोर सिद्ध हो चुके हो ना, और इसीलिए तुमको दंड दिया जा रहा है। अब इस यातना का तो इस दंड की जो यातना है उस यातना के भोग में तुमको मानसिक ही यातना होगी ना, हमको शरीर का दंड तो दे नहीं रहे, शारीरिक दंड तो नहीं दे रहे तुम्हें, ना तुम्हें कोई दंड मार रहे हैं, ना छड़ी से मारा ना पीटा, लेकिन जब तुम एक महीना जेल में हुआ, अभी क्या है वो 2 करोड़ करप्शन के उसमें भोग रही है ना, क्या नाम है वो, कनिंग जी, अब वो क्या है? उसको कोई पीट नहीं रहा है, वीआईपी में है, लेकिन आखिर उसके मन की यातना तो भोग रही है ना, वो पीड़ा तो है, वो कलमाड़ी देख लो, अरबों रुपया के हेराफेरी में फंसा हुआ जेल में, तो आखिर उसके मन की यातना तो है ना, पीड़ा तो है ना, मानसिक पीड़ा तो है ना उसको, शारीरिक कोई पीड़ा नहीं दिया जा रहा है, मानसिक पीड़ा तो उसको है। तो इसीलिए मानसिक कर्म का भी फल होता है। जैसे चोरी करूं ये संकल्प से किसी घर में घुसेगा, चोरी न करने पर भी वो चोर सिद्ध हो गया कि नहीं। इस बात को महाभारत में भी बड़ा सुंदर दृष्टांत से समझाया जाता है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो कर्ण और युधिष्ठिर के बीच में युद्ध चल रहा था, और कर्ण की प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन के बाद मैं बायक और किसी को नहीं मारूंगा, प्राण हत्या में केवल अर्जुन का ही करूंगा, अर्जुन के अलावा और किसी भी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, उनको मैं प्राणांत प्रहार नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर और कर्ण के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब कर्ण ने प्रतिज्ञा की युधिष्ठिर को नहीं मारूंगा, और युधिष्ठिर कर्ण के सामने टिक ही नहीं सकते, जब सामने जाते हैं मारता एक थप्पड़ वो धराशायी हो जाते। तो रोज जब युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो मेरे सामने क्यों खड़ा होता है, जा भाग नालायक कहीं का, अपमान करता है भेज देता है। और नियम यह है कि या तो शत्रु को मारो या सरेंडर कराओ। युधिष्ठिर को कर्ण मार नहीं सकता है, युधिष्ठिर सरेंडर नहीं होते, क्योंकि उस योद्धा का नायक युधिष्ठिर है, महाभारत युद्ध का नायक तो युधिष्ठिर है, पांच पांडवों के नेता तो वही है। वो सरेंडर कर गए तो राजा सरेंडर हो गया, तो सेना वैसे सरेंडर हो जाएंगे। और युधिष्ठिर को सरेंडर होना नहीं है, युधिष्ठिर चाहते हैं कि मुझे मार डाले वो, कर्ण युधिष्ठिर को मारता नहीं। तब बहुत हो गया, दो चार दिन तक युधिष्ठिर के मन में बहुत खिन्नता हुई और अर्जुन को कहा मुझे कर्ण इस तरह मेरा बेहाल करता है, मारता है, और तू मदद करने नहीं आता है, मेरा देखते हुए भी मेरे मदद करना नहीं आता है। और नियम यह है कि जिसके सामने आसपास में आमने सामने युद्ध हो रहा हो तो दूसरा व्यक्ति न जाए। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि क्योंकि तेरे हथियार कमजोर है इसलिए तू मदद करने नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि तेरा यह धनुष बाण बड़ा तू घमंड करता था, कर्ण के हथियार के सामने ये तेरे धनुष बाण तो घास फूस का हथियार है, तुच्छ है, गांडीव धनुष। अब युधिष्ठिर इस बात को भूल गए कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी सबके सामने, मुझे चाहे जितना अपमान करे उसको मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन इस शिव प्रदत्त गांडीव धनुष का यदि कोई अपमान करेगा इसी धनुष बाण से उसका शिरच्छेदन कर दूंगा। यह अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। कृष्ण को भी मालूम है कि इस अर्जुन का प्रतिज्ञा और युधिष्ठिर को भी मालूम था, लेकिन उससे भी भूल गए और गांडीव धनुष के अपमान कर दिए अर्जुन के सामने। तब तो उसने तुरंत गांडीव धनुष उठाया और मारने की तैयारी करने लगा, और बीच बचाव तो कृष्ण को ही करना था। तुरंत आ गए, हे अर्जुन ये क्या कर रहा है, अभी तो कोई युद्ध नहीं है, युद्ध विराम हुआ है, कोई शत्रु सामने नहीं है, एक गांडीव धनुष क्यों उठा रहा है, तीर क्यों चढ़ा रहा है। बोले मैं युधिष्ठिर का खात्मा करूंगा, युधिष्ठिर का प्रहार करूंगा, मारूंगा युधिष्ठिर। क्यों? बोले आपको पता ही है मेरी प्रतिज्ञा, गांडीव धनुष की जो निंदा करेगा उसको मैं मार डालूंगा। तो फिर क्या हुआ? बोले आज युधिष्ठिर ने मेरे निंदा करते करते गांडीव धनुष की भी निंदा कर दी। मेरी निंदा को तो मैं सहन कर गया, मैं कर जाऊंगा, अभी भी कर जाऊंगा, मेरे बड़े भाई हैं जो कुछ भी कहे मैं सहन करूंगा, लेकिन उन्होंने ये गांडीव धनुष के लिए कहा कि ये तो बच्चों का खिलौना घास फूस का है, तो वो अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए मैं प्रहार करूंगा। भाई रुक, ऐसा नहीं कर। बोले फिर मेरा प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो तेरी प्रतिज्ञा का भी हम रक्षा करेंगे, तू चिंता न कर। सो कैसे? क्योंकि अर्जुन ने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी, करी से वचनम तव, है ना? करिष्ये वचनम तव, ये प्रतिज्ञा पहले ही है, तो फिर आपके वचन को मैं पालन करूंगा। बोलिए मेरा प्रतिज्ञा बेकार भी न जाए, झूठा भी न हो, युधिष्ठिर की जान भी बचे, कोई उपाय हो तो मैं वो उपाय बताता हूं। जा और युधिष्ठिर को बड़ी भली बुरी गाली दे, जैसे युधिष्ठिर ने तुझे गाली दिया, तेरे धनुष को गाली दिया, इसी तरह युधिष्ठिर को भली बुरी गाली जितना दे सकता है दे। अर्जुन ने कहा कि महाराज गाली तो मुझे नहीं आती है। अर्जुन को क्या गाली, किसने सिखाया उसको गाली आने में, आप लोगों को किसने सिखाया, पढ़ाया स्कूल में? कृष्ण ने कहा चिंता न कर, गाली तो मुझे आती है। बोले तुम्हें कहां से आएगी गाली? बोले मुझे शिशुपाल ने पढ़ाया है ना? कितनी गाली सिखाया शिशुपाल ने? 108 गाली तक, 107 गाली तक तो सहन करेंगे कृष्ण, 108वें गाली में प्रहार करना था हाँ? तो शिशुपाल ने मुझे 107 गाली का 108 ही गाली जो है मुझे पढ़ाया है, हमको पूरा बाय हार्ट है, चल तुझे सिखाता हूं, फटाफट सिखाया, जा ये गाली दे, नालायक कहीं का, नपुंसक कहीं का, जुआड़ी कहीं का, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन गया फटाफट शुरू कर दिया और आ गया अपने शिविर में। अब युधिष्ठिर बस बैठे बैठे चिंता करने लगे कि आज क्या हुआ है, दिन भर कर्ण मुझे प्रहार करता है और गाली देता है, और उससे खिन्नता, और अभी तो अर्जुन भी आकर इस प्रकार के कहने लगे, अब बचने से कोई फायदा नहीं है, कर्ण मुझे मारेगा नहीं और कोई भी मुझे मारेंगे नहीं, अब बचे रहूंगा तो फिर ये अर्जुन भी गाली दे रहा है, कर्ण भी गाली दे रहा है, इसलिए अब मर जाना ही ठीक है। रात के सुनसान अवस्था में युधिष्ठिर निकले और आत्महत्या करने के निश्चय से निकल गए। कृष्ण को तो पता ही था कि अर्जुन माने युधिष्ठिर यही करने वाले हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्मधृक्, सभी के हृदय के वृत्तियों को वो पहले से जानने वाले दृष्टा साक्षी, उनको पता था कि युधिष्ठिर के हृदय में क्या भाव आने वाला है, यही आने वाला है कि मैं मरूंगा। जब युधिष्ठिर गए तो कृष्ण फट से रास्ते में पहुंच गए, कहां जा रहे हो? तो बोले अब आत्महत्या करने जा रहा हूं। मगर क्यों? बोले अब बचने से जीवन से कोई फायदा नहीं है। क्यों? दिन भर कर्ण मुझे बुरी तरह लताड़ता है, पछाड़ता है, भले बुरी कहता है, और आज तो शिविर में आकर भी अर्जुन मुझे बड़ा मेरा बहुत अपमान किया। तो आपने भी कहा, आपने ही तो कहा है संभावित चाकृतिर मरणादतिर इच्छेते, जिन्होंने सम्मान दिया है वही लोग यदि अपमान करने लग जाए तो वह मृत्यु से भी भयंकर होता है। तो अब जीकर जीवन भर मृत्यु की पीड़ा सहन करने की अपेक्षा तो एक ही बार खत्म कर लो जीवन लीला, ये निश्चय करके अब मरने के लिए जा रहे हैं।